नमस्कार। शाम के 8:30 और 19 सेकंड का समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं रवि कपूर। और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद रवि।
तो शुरूआत करते हैं कार्यक्रम की मुख्य समाचारों से। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ जारी। शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सिंगल्स रैंकिंग 24 पर पहुंची और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। थाईलैंड ओपन में पुरुष डबल्स प्रतियोगिता में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव बाहर हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये मुकाबला गुवाहाटी के बारसापाड़ा स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान की टीम ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
आईपीएल में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 208 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 189 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में 7 हार और 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 7 हार और 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर 7वें स्थान पर आ गई है। दोनों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने का दारोमदार शेष टीम के प्रदर्शन पर निर्भर है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अंक तालिका में 19 अंक के साथ शीर्ष पर है। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
कल हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से शाम 7:30 बजे होगा। तो प्रेम प्रकाश जी, राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल, राजस्थान की टीम देखिए काफी, अगर हम पहले संस्करण की बात करें तो पहले संस्करण की आईपीएल में चैंपियन टीम रही है और जिस तरीके से अब तक का प्रदर्शन रहा है, हालांकि पिछले 4-5 मैचेस के अगर डाटा हम देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी टीम में कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर नजर आई है। जिस तरीके से जिस लय में टीम खेल रही थी वो लय थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। और अभी क्योंकि हमारे सामने T20 वर्ल्ड कप भी है तो ऐसे में कुछ प्लेयर्स है वो छोड़कर जा भी चुके हैं।
लय डिस्टर्ब होने का क्या कारण रहा?
मुझे लगता है कि एक तो जैसे एक बड़ा सवाल है यशस्वी जायसवाल जो है वो बहुत कम मैचेस में प्रदर्शन कर पाए हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाड़ी वो जो खिलाड़ी जिस दारोमदार के खिलाड़ी है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कई बार हो सकता है कुछ दबाव है या टीम में चयन होने का भी एक दबाव होता है कई बार। और क्योंकि जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल खेलने का आपके पास अनुभव नहीं होता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव फील करता है एक प्लेयर, तो ये भी एक कारण है कि वो शुरुआत में बहुत अच्छी शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। संजू सैमसन निश्चित रूप से बहुत सही चल रहे हैं और एक और प्लेयर जिसकी मैं निश्चित रूप से बात करूंगा जिन्होंने जो है राजस्थान की टीम को पराग इसने राजस्थान की टीम को जिताने में शुरुआत के कई सारे मैचेस जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे लगता है कि क्वालिफाई तो कर ही चुके हैं और बहुत कांटे की टक्कर 4 टीमों में होने वाली है। हालांकि बाकी की टीमें जैसे हैदराबाद जिस लय में खेल रही हैं बहुत सारे रिकॉर्ड तहस नहस किए हैं, बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हालांकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां हम कई बार कहते हैं कि बहुत अनिश्चितताओं का खेल है और किस दिन किस प्लेयर का या किस टीम का जो है दिन है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।
वैसे ये देखा गया है कि पिछले आईपीएल का भी अगर हम इतिहास देखें तो पंजाब की टीम थोड़ी सी हमेशा से हल्की टीम मानी गई, ऐसा क्यों?
देखिए, डिपेंड करता है कि कौन प्रदर्शन किस तरीके का खिलाड़ी कर रहे हैं। एक टीम में आईपीएल का हम जानते हैं कि टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी है। वही प्लेयर किसी दूसरी टीम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से लेके टीम के जो कोचेज से लेके और बहुत सारा जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है इस पर भी एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है। और शुरू से हम देख रहे हैं आरसीबी में जहां विराट कोहली जैसा प्लेयर है, लेकिन कई बार इस तरीके की चीजें आती है कि मैनेजमेंट ही इस तरीके का है कि चाहता ही नहीं है कि वो जीते। सेम चीज कहीं ना कहीं पंजाब की टीम के साथ भी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स पंजाब की टीम में रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी टीम कहीं प्लेऑफ में भी जगह बनाने में सक्षम नहीं रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का कोऑर्डिनेशन या जो भी मैनेजमेंट का एक जो दबाव कहें या किस लेवल पर मैनेजमेंट ने फ्रीडम दिया हुआ है प्लेयर्स को, ये एक बहुत बड़े सवाल है।
जी, दोनों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं?
चार जो टीमें हैं अभी तक जिनको हम देख रहे हैं, दो पहले क्वालिफाई कर चुकी है और दो जो नीचे हैं, हैदराबाद की हम बात करें और चेन्नई की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि टीम कमजोर कोई सी भी नहीं है। और चेन्नई में जहां जिस तरीके का शुरू में एक लय बिगड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा अनुभव है महेंद्र सिंह धोनी के रूप में, और कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि चाहे चार बॉल खेले वो, लेकिन एक लेवल पे वो आज भी खेल सकते हैं। लेकिन उनका जिस तरीके का मेंटल लेवल है, जिस तरीके से टीम के कोऑर्डिनेशन को, टीम में जो स्पोर्ट्स स्पिरिट चाहिए उसको बना के वो रखने में सक्षम हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि वो जो है प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत रेयर चांसेज है कि बाकी टीमें यहां रिप्लेस करके और प्लेऑफ में जगह बना पाएगी।
जी, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने तीसरे 2020 मैच में आयरलैंड को 18 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हरा दिया और तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 75 रन और मोहम्मद रिजवान ने 56 रन का योगदान दिया। इससे पहले आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। कप्तान लॉरकन टकर ने 73 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 17 ओवर में ही केवल 4 विकेट खोकर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रियंका जी, पाकिस्तान का आयरलैंड जैसी हल्की टीम से जीतना क्या कुछ मायने रखता है?
देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते स्पोर्ट्स में कि कोई टीम बहुत हल्की है और कोई टीम बहुत बड़ी है, क्योंकि कई बार बहुत धुरंधर टीमें हैं, उनका मिनिमम स्कोर बहुत कम हो जाता है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर पाते। और कई बार जैसे आईपीएल जैसे मंच पे ही हम देखते हैं कि स्कोर लगभग 300 के आसपास चला जाता है, तो डिपेंड करता है। और नई टीमें हैं, आजकल की हम बात करें तो कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त हो गया है टीमों के बीच में, प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि सिर्फ खेलना काफी नहीं होता। एक प्लेयर के लिए अपनी फिटनेस को बनाए रखना, एक मेंटल लेवल को बनाए रखना, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो किस परिदृश्य में रहकर, किस दायरे में रहकर तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई टीम कमजोर है और कोई टीम बहुत मजबूत है।
जी, देखा गया है कि अक्सर बाबर आजम का छोटी टीम के सामने प्रदर्शन अच्छा होता है, लेकिन जब बड़ी टीमों के सामने वे संघर्ष करते नजर आते हैं, तो आपकी राय क्या है इस पर?
मुझे लगता है कि एक प्लेयर के लिए छोटी और बड़ी टीम जैसा नहीं होता, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कई बार एक चीज होती है कि आप जब आप खेल रहे होते हैं तो आपके सामने अगर इंटरनेशनल लेवल पर पहले से प्रदर्शन किए हुए बॉलर्स होते हैं या आपके जो है साथ के बैट्समैन होते हैं, तो इसका निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट पड़ता है। जहां पहले से खेले हुए लोग नहीं होते वहां पर आप बहुत फ्री होके खेलते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस का दबाव बढ़ता है तो मुझे लगता है वो दबाव भी कहीं ना कहीं आपको आपके खेल को डिस्टर्ब करता है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे उनके भी रिकॉर्ड्स हैं, काफी सारे रन बना चुके हैं पाकिस्तान के लिए।
जी, शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद कैरियर की सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स रैंकिंग 24 पर पहुंच गई और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। टूर्नामेंट से पहले वे 39वें स्थान पर थीं। 28 वर्षीय खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनिका ने जेद्दाह में सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अपने इस प्रदर्शन से 15 स्थान की लंबी छलांग लगाने में सफल रहीं। ये पहली बार था जब कोई भारतीय महिला टूर्नामेंट में इतना आगे बढ़ी। तो प्रेम प्रकाश जी, मनिका बत्रा के खेल में अचानक एक बदलाव देखा गया है जिसमें उन्होंने रैंकिंग में एक बड़ी छलांग लगाई है, इसका कारण आप क्या?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मनिका बत्रा ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे देश के स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से बहुत चंद दिन शेष रह गए हैं अब पेरिस ओलंपिक में, और ऐसे में हमारे किसी चैंपियन खिलाड़ी का चैंपियन की तरह प्रदर्शन करना निश्चित रूप से हमारी आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को और बढ़ाएगा भी, और हम ये मान के भी चल सकते हैं कि हमारे लिए जो है मेडल तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है खेल में जिस तरीके से पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि खेल परिदृश्य में पूरा एक बदलाव आया है, खेल संस्कृति का एक निर्माण हो रहा है जिस तरीके से भारत सरकार और सबके मिले जुले प्रयासों से, इनफैक्ट एथलीट्स के भी मिले जुले प्रयासों से जिस तरीके से खेल और दूसरी गतिविधियों को जो है तवज्जो दी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे केवल जो ऑलरेडी खेल रहे हैं प्रोफेशनल वो प्लेयर ही नहीं बल्कि जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत मजबूती के साथ हमारे पास में है कि हमको अगर जरूरत पड़े तो बहुत कुछ हम आगे अचीव कर सकते हैं।
जी, थाईलैंड ओपन में पुरुष डबल्स प्रतियोगिता में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आज मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब अजरीन और टैनवी क्योंग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 21-13 से जीत दर्ज की। अब दूसरे दौर में उनका मुकाबला चीनी जोड़ी जेंग वेई हान और झी हाओ नान के साथ होगा। उधर दुनिया के 83वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी मिराबा लुवांग मैसनाम ने शुरुआती दौर में वरिष्ठ हमवतन और दुनिया के 9वें नंबर के एचएस प्रणॉय को 21-19, 21-18 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। मैसनाम का अगला मुकाबला डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन से होगा। महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा ने इंडोनेशियाई शटलर को 19-21, 21-15, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। गत चैंपियन दूसरी वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव अमरीका के टॉमी पॉल से 1-6, 4-6 से हारकर इटालियन ओपन टेनिस से बाहर हो गए। इससे पहले 10 बार के चैंपियन राफेल नडाल और शीर्ष रैंकिंग वाले नोवाक जोकोविच भी हारकर बाहर हो चुके हैं। तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने नूनो बोर्गेस को 6-2, 7-5 से हराया और अब वे टेलर फिट्स से खेलेंगे। फिट्स ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-2, 6-7, 6-1 से मात दी। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वियातेक ने मेडिसिन कीस को 6-1, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ से होगा जिन्होंने किवेन झेंग को 7-6, 6-1 से हराया। इटालियन ओपन टेनिस में शीर्ष खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। प्रियंका जी, क्या नए खिलाड़ी उनका स्थान लेने के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल, देखिए जिन प्लेयर्स का हम लोगों ने नाम लिया, चाहे हम रोहन बोपन्ना की बात करें, राफेल नडाल और जोकोविच की बात करें, बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं। उन लोगों के पास अनुभव इतना है जितना नए खेलने वाले प्लेयर्स के साथ उम्र भी नहीं हो, लेकिन यही एक कारण भी है क्योंकि एक एज के उस मुहाने पे है ये सारे के सारे प्लेयर्स जो बाहर हुए हैं, उनके लिए अपनी फिटनेस एक बड़ा चैलेंज हो जाती है कि जब उनके पास अगर 20-22 साल का या 24 साल का एक नया एथलीट आता है तो उससे कम्पीट कर पाना, केवल अनुभव के बिहाफ पे आप उससे कम्पीट कर पाना आपके लिए थोड़ा सा टफ है। तो खेल ऐसी गतिविधि है ही जहां आप बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को नहीं रख सकते हैं, जब तक आपकी फिटनेस इसके लिए अलाउ करती है आप तब तक वहां रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से नए खिलाड़ियों को के लिए एक नया वो है, ये दौर है।
जी, अंजुम मुदगिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एमपी स्टेट शूटिंग अकादमी की रेंज में आज महिलाओं और पुरूषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन ओलंपिक चयन ट्रायल क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहे। एक रिपोर्ट।
अंजुम मुदगिल ने 600 अंक में से 592 अंक का स्कोर बनाया जो अब तक का उनका उच्चतम ओलंपिक चयन ट्रायल है, जबकि ऐश्वर्या ने 590 का एक और गुणवत्ता स्कोर बनाकर 5 खिलाड़ियों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की नंबर एक और फाइनल विश्व रिकॉर्ड धारक सिफ्त कौर समरा महिलाओं की 3 पोजीशन में 589 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों के 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने 587 के स्कोर के साथ एक अच्छा ट्रायल रन बढ़ाया और ऐश्वर्या के बाद दूसरे स्थान पर रहे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
प्रियंका जी, आपने ये सुना रिपोर्ट हमारी। ओलंपिक को खेलकर भारत की तैयारी कैसी है और वे क्या सुधार कर सकते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से खेल के प्रति हमारे देश में जो बहुत सारी गतिविधियां चल रही है और उनके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है बेहतरीन तैयारी है और आगे 2036 में हमारे यहां ओलंपिक जो है अनाउंस्ड है
जी।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो, और पीछे अगर हम एशियन गेम्स या पैरा एशियन गेम्स की बात करें, वो इतिहास भी हमारे पास है, अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, जहां हमने रिकॉर्ड मेडल जीते हैं, तो बहुत अच्छी एक्सपेक्ट की जा सकती है हमारे जितने भी नए एथलीट्स हैं उनसे कि पेरिस ओलंपिक में निश्चित रूप से भारत का मान बढ़ाएंगे।
जी, तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। प्रेम प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, शुभरात्रि।
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को। नमस्कार।